नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और मेरी उम्र अभी 45 साल है। मगर मैं जो ये हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ वो पुरानी है। जब मेरी शादी अशोक से हुई थी मैं सिर्फ 19 साल की थी। शादी के एक साल बाद ही हमारा एक बेटा निखिल हुआ। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी कि अचानक ही शादी के 3 साल बाद अशोक की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं सिर्फ 22 साल की उम्र में विधवा हो गई। मेरी ज़िंदगी में मेरे अलावा मेरे बेटे निखिल के सिवाय कोई नहीं था। मेरी दुनिया में कोई नहीं रहा, सिर्फ निखिल। समाज और घर वाले मुझे दूसरी शादी करने के लिए बहुत फोर्स करने लगे, मगर मैंने ठान लिया कि अब मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी। मैंने अपने बेटे के सहारे ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूँगी। बस मैं अपने बेटे के साथ ज़िंदगी स्पेंड करने लगी। मैं गाँव में रहती थी। समय के साथ मेरे शरीर में अब हलचल होनी शुरू हुई, सेक्स की लपटें उठनी शुरू हुई। मैंने अपने दिल को हजारों बार समझाया मगर ये जवानी बहुत तकलीफ देती है। एक दिन अचानक ही बाजार में मुझे ललित मिल गया। ललित मेरे गांव का एक लड़का था। शादी से पहले मेरा अफेयर ललित के साथ था। ललित एक ऐसा लड़का था जो मेरे पति से पहले मेरे साथ अनगिनत बार शारीरिक संबंध बना चुका था। मैं शादी भी उसी से करना चाहती थी मगर घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई और अशोक से शादी हो गई। अब तक मैं ललित को भूल चुकी थी मगर आज उसे देख मुझे उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा याद आ गया। ललित मुझे देख हैरान था कि 3 साल पहले शादी हुई और अब ये विधवा हो गई। बड़ी झिझक से उसने मुझसे बातें की। मैं भी उससे बातें करने लगी, अपनी पूरी कहानी बताई उसे। उस दिन तो हम वहां से अलग हुए मगर ललित को देख कर मेरे अंदर अजीब सी लहरें उठनी शुरू हो गई। मैंने अपने आप को बहुत रोका कि जो पहले हुआ वो ठीक नहीं, क्योंकि अब मैं एक बच्चे की माँ थी। एक के बाद एक 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई मगर अभी तक सब कुछ सिर्फ बातों तक सीमित था। शारीरिक जरूरतों के चलते मैं अपने आप को ज्यादा दिन रोक नहीं पाई और एक दिन दोनों की मर्जी से फिर से सेक्स हो गया। मेरे अंदर 1 साल से घुमड़ रहे बादल ने उस दिन जमकर बरसात की। मेरा एक एक अंग ललित की फुहारों से तर बतर होकर झूम उठा। एक बार फिर से ललित से संबंध बने तो बस फिर क्या, उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। करीब 4 साल बीत के हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों किस दरिया में बह रहे थे। हम कहीं ना कहीं किसी भी हालात में इन 4 सालों में हर दिन मिलते और अपनी काम वासना को शांत करते, मगर ऐसे नाजायज संबंध ज्यादा दिन नहीं छुपते। धीरे धीरे हमारी बातें गाँव में फैली और सब जान गए कि मेरे और ललित के बीच में क्या संबंध है। ये बात मेरे घर वालों तक पहुंची तो सब मुझे जैसे काट खाने को आए, ताने मारने लगे। मैं थक कर गांव छोड़कर शहर चली गई। वहां मुझे अपना पेट पालना था, साथ में मेरे बेटे का भी अच्छे से पोषण करना था। पढ़ी लिखी थी तो मुझे कंपनी में काम मिल गया, मैं वहां काम करने लगी। साथ ही वहां मुझे अपने शरीर की आवश्यकता का ध्यान रखना था। कुछ दिनों बाद मेरी कंपनी के एक लड़के के साथ मेरा टाका बढ़ गया। उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता फलने फूलने लगा। 10 साल तक कंपनी में काम करते रहने के बाद अब मेरे बेटे निखिल की उम्र जानने समझने की हो गई। उधर कंपनी वाले उस लड़के की शादी होकर दी गई, जिसके बाद हमारे बीच कोई संपर्क नहीं था। मेरे अंदर अब भी सेक्स की भूख शांत हो चुकी थी। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। निखिल अब 12वीं तक की पढ़ाई करके कॉलेज जाने लगा। मेरा बेटा अब जवान हो गया था, मेरी उम्र भी आगे बढ़ने लगी। मगर कहते हैं ना कि चढ़ती जवानी और उतरती जवानी दोनों पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो चढ़ती जवानी से निकल गई थी मगर उन 39 साल की उम्र में जवानी की अंतिम अवस्था में पहुंची थी। शरीर में एकाएक सेक्स की तीव्र इच्छा होने लगी मगर मैं इससे बच रही थी। कारण था कि अब बेटा 19 साल का हो चुका था। अगर मैं कुछ भी गलत करती तो ये बात किसी को पता चले ना चले निखिल तक पहुंच सकती थी। फिर क्या एक जवान बेटे पर क्या गुजरती। मैं अपने आप को बहुत समझा बुझा कर रख रही थी मगर ध्यान उफ। मगर एक रात जब मैं सो रही थी, करीब रात को 11 बजे, बाजू वाले कमरे में जहां निखिल सोता है ना, वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा निखिल कोई मूवी देख रहा होगा, पर जब बहुत देर तक किसी लड़की की हंसने की आवाजें आने लगी तो मैं चुपचाप उठकर खिड़की से झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गई। अंदर नेहा थी, निखिल की क्लास की लड़की, कई बार हमारे घर आ चुकी थी, मगर उस वक्त वो पूरी तरह नंगी थी और निखिल के लंड को चूस रही थी। तब मेरी नज़र निखिल के तने लंड पर पहुंची तो मेरे तो होश उड़ गए। एकदम घोड़े जैसा लंबा और मोटा लंड, इतना मोटा लंबा लंड दुनिया में हजारों में इससे एक दो का ही होता होगा। नेहा लंड का महज टोपा बस में ले पा रही थी। ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ी। देखते ही देखते उन दोनों की जुदाई शुरू हो गई। मैं बस चुपचाप दर्शक की तरह देख रही थी। मेरा हाथ अब मेरी चोट तक पहुंचा, बहुत गर्म थी। उधर नेहा निखिल के लंड को ठीक से ले भी नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ में थी। मुझे ये सब देख के जोश आ गया, मगर मैं वहाँ जा नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा बेटा था। 40 मिनट की मैराथन जुदाई के बाद नेहा तो ऑलमोस्ट मूर्छित से पड़ गई। निखिल ने अपना पानी नेहा के बदन पर गिरा दिया। अब तक मेरी जूत भी 2 बार पानी छोड़ चुकी थी। मैं वापस बिस्तर में आ गई। उसी बीच मुझे समझ आया कि नेहा चुपके से निकल गई। सारी रात मुझे निखिल के घोड़े जैसा लंड दिमाग में घूमता रहा। मेरे अंदर काम वासना बढ़ गई। फिर जैसे तैसे मुझे नींद आई। सुबह निखिल को देखा तो फिर से वही चित्र दिमाग में घूमने लगा, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे सेक्स करने की बहुत इच्छा थी, मगर मैं हाथ पांव भी नहीं मार सकती थी। अब तो हर रात वही नज़ारा देखती और खुद को उंगली से शांत करती। करीब 5 दिन तक मैंने लगातार दोनों की जुदाई देखी। उसके बाद 4-5 दिन वो नहीं आई। उसी बीच मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना था। मैंने निखिल से अपने गांव जाने की बात कही। वो कॉलेज से आने के बाद गांव जाने की बात बोला। निखिल 4 बजे घर आया और हम दोनों शाम को 5:30 बजे घर से निकले। गांव शहर से 70 किलोमीटर दूर था। हम दोनों को एक दिन बाद वापस भी आना था, तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लिए और घर से मोटरसाइकिल से निकल गए। ठंड का मौसम था। हम घर से निकले तो हल्का अंधेरा छाने लगा। करीब 40 किलोमीटर पहुंच पाए कि अचानक ही काले बादल घिरे और तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ऐसी जगह फंसे जहां सीधा हमारा गांव आता, बीच में और भी कोई गांव नहीं था। बारिश तेज थी, इस कारण से हम भीग गए और बाइक भी धीरे चल पा रही थी। मैंने निखिल को एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा ताकि हम थोड़ी देर तो बच जाएं। हम तो वैसे भी पूरे भीग चुके थे। तभी धीरे धीरे बिजली चमकना शुरू हुई। जब बिजली की चमकने से लाइट आती तो निखिल और मैं पूरी तरह दिख जाते। मेरी साड़ी मेरे शरीर में चिपक गई। निखिल मेरी तरफ देख रहा था। जब रोशनी में मेरी नज़र उससे टकराती तो वो झुका लेता नजरें। मुझे अजीब लगने लगा। हम दोनों ने बिजली के कड़कने की हल्की आवाज सुनकर उस पेड़ से हटने का मन बनाया और गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अभी हम दोनों 2 किलोमीटर ही गए होंगे कि रास्ते में एक बंद ढाबा दिखा। हम वहां रुक गए, सोचा शायद इधर कोई होगा, मगर जब वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई नहीं था। अंदर एक कमरा था जहां एक छोटी सी चारपाई थी। हम दोनों वहां रुक गए तो बारिश के पानी से भीगने से बच गए, मगर हम तो पहले ही भीग चुके थे और हमें ठंड भी लग रही थी। निखिल, तुम अपने गीले कपड़े निकाल दो, ठंड कम लगेगी। हाँ, मैं यहीं बाहर रह जाता हूँ, आप भी अंदर कमरे में जाकर कपड़े सुखाओ, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। मैं अंदर जाकर साड़ी निकालकर वहां लगे खूंटी में टांग दी। बाहर निखिल भी अपनी शर्ट उतारकर सुखाने लगा। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं ऐसी ही चरपाई पे बैठी थी कि अचानक जोर से तेज बिजली के कड़कने से मेरे मुंह से चीख निकल गई। निखिल मेरी चीख सुन भागा भागा अंदर आया। उसके नजदीक आते ही पहले से कहीं तेज एक बार फिर बिजली खड़की। मैं झट से निखिल को पकड़कर उससे लिपट गई। मैंने उसे जोर से पकड़ा। मेरे सीने के उभार उसके सीने से दब गए। मेरी सांसें उसकी छाती से टकराने लगी थी। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया था। वो नए खून के जवान लड़का था। एक स्त्री की गिरफ्त में आते ही उसके अंदर हलचल शुरू हो गई। निखिल ने भी मुझे अपने हाथों से पकड़ा। मेरे पीठ का ज्यादातर हिस्सा खुला था। मुझे बिजली से बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना यहाँ, आप डरो नहीं। तभी मुझे मेरे कमर के आसपास कुछ उभार महसूस हुआ। मैं समझ गई कि निखिल का तगड़ा लंड तन रहा है। उसके बारे में सोचकर ही मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश होने लगी। मैं उसके सीने में सर छुपाए उस उभार को महसूस कर रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस कुछ देर ऐसे ही लिपटे रहेंगे तो ठंड कम हो जाएगी। मुझे और जोर से पकड़ो निखिल, गर्मी मिलेगी। फिर मुझे निखिल और जोर से अपनी बाहों में कसने लगा। मेरा स्तन उसकी छाती से जोर से दब चुका था। उसके हाथ मेरे पीठ पर थे। मेरे अंदर जुदाई का नशा छाने लगा। मैं भूल चुकी थी कि जिससे मैं लिपटी थी वो मेरा सगा बेटा है। मुझे अपनी कमर में जहाँ भार महसूस हो रहा था उस जगह को मैं हल्के हल्के से दाएं बाएं करके कमर से रगड़ रही थी। कितनी गर्मी थी वहाँ। निखिल को मेरी इस हरकत के बारे में पता लग गया। वो अपनी कमर को मेरी तरफ जोर से चिपकाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ मेरे पेट में हल्का हल्का चलने लगा। मुझसे अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बोली, निखिल हम दोनों ठंड से मर जाएंगे। अब हमें जिंदा रहने के लिए अपने अंदर की गर्मी को एक दूसरे के सहारे से संभालना पड़ेगा। हाँ, मैं निखिल की हाँ सुनते ही अपना हाथ निखिल के लंड पर ले गई। मैं उसके लंड को सहलाने लगी। मेरा ऐसा करते ही निखिल मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर उस जगह को होंठों से चूमने लगा। मैंने उसकी पैंट ढीली करके लंड को बाहर निकाला और हाथों से पकड़ लिया। गजब की लंबाई मोटाई थी भाई, उसका लंड मेरी मुट्ठी में ही नहीं आ रहा था। आज मैं भी अपनी ढलती जवानी की ज्वाला को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे अंदर इस वक्त बस जुदाई की भूख जाग गई। सामने वाला लड़का जो भी हो, मुझे होश ही नहीं रहा। दूसरी तरफ निखिल भी न जाने कौन से धुन में था कि बिना झिझक के वो मेरे साथ देने को आतुर हो गया। उसने मेरे पेट में अपना हाथ घुमाते हुए अपना हाथ वहाँ पहुँचाया जहाँ से मुझे अपनी आँख शांत करनी थी। आज मैं अपनी चूत में अपने बेटे के हाथों का स्पर्श महसूस करने वाली थी। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासिना.com पर सुन रहे हैं। मेरा बेटा अपनी उंगलियों से मेरी चूत को गजब तरीके से सहला रहा था। तभी निखिल ने मुझे पलट दिया। अब मैं उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी और वो मेरे स्तनों को मसल रहा था। वो बहुत जोश में था, मेरे पेटीकोट को ऊपर करने लगा। पेटीकोट को कमर तक उठाकर मेरे कच्चे को नीचे खिसका दिया। फिर मुझे घोड़े के जैसे हल्का सा सामने को झुकाकर उसने अपना तगड़ा लंड मेरी चूत में टिका दिया। चूत में निखिल के लंड के स्पर्श से मेरा रोम रोम झुंझुनाहट से भर गया। आज खुद के बेटे का लंड मेरी चूत के अंदर जाने वाला था। निखिल ने मेरी चूत की दरार में लंड का टोपा फंसाया और लंड अंदर उतारने लगा। मेरी आहें निकलने लगी। निखिल ने धीरे धीरे खिसकाते हुए अपने लंड को अंदर तक पेल कर अपना कब्जा जमा लिया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे निखिल का लंड मेरे सीने तक ना आ जाए। मैं जिंदगी में पहली बार इतने मोटे लंबे लंड से चूत रही थी, वो भी अपने बेटे के लंड से।